arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुत कहानी का नाम
पश्चाताप। रात्रि के अंधकार में एक छोटी आकृति धीरे धीरे आहट लेती हुई एक कोठी में घुसी। भयंकर जाड़ा पड़ रहा था, सभी रजाइयों में दुबके पड़े थे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए आकृति आसानी से पाइप के सहारे ऊपर पहुंच गई। उसने बंद दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा शायद खुला रह गया था। उसने कमरे में झांका, वहां किसी को न देखकर उसने दूसरे कमरे के दरवाजे को, जिसमें से खर्राटों की आवाजें आ रही थीं, आहिस्ता से बंद कर दिया। अब उसने अंधेरे में ही अलमारी में चाबी लगाई। कई प्रयासों के बाद तीसरी चाबी से अलमारी खुल गई। रहस्यमय आकृति जल्दी से कुछ टटोलने लगी। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली लग गई। उसे लगा इसमें ही रुपए हैं। फिर थैली अपने कंधे में लटकते झूले में डाली और पाइप के सहारे नीचे उतरकर वो आकृति अंधेरे में गुम हो गई। लगता था वो इस जगह से अच्छी तरह परिचित है। सवेरे कोठी में हल्ला मच गया कि चोर कीमती गहने लेकर भाग गए। कोठी के मालिक सेठ विशन दास ने पुलिस बुला ली थी। नौकरों से पूछताछ की जा रही थी। दरवाजे पर चौकीदार रात भर पूरी चौकसी से पहरा देता रहा था। आश्चर्य तो ये था कि चोर आया किधर से और कमरे में घुसा किस तरफ से। ऐसा लगता था चोर इस घर के चप्पे चप्पे की जानकारी रखता था। सभी सामान जैसा का तैसा पड़ा था, बस कपड़ों के नीचे रखी पोटली गायब थी जिसमें कीमती जेवर थे। विशनदास की पत्नी दुर्गा देवी के भाई का विवाह था, इस कारण एक दिन पहले वो बैंक के लॉकर से ये गहने लाई थीं। गहने कीमती एवं पुश्तैनी थे, इसी कारण सेठ जी दुखी तथा परेशान थे। दुर्गा देवी रोए जा रही थीं। दोनों बेटियां अभी छोटी थीं। माँ को रोती देखकर वे भी रोने लगीं। आखिर सेठ जी ने अपने को संतुलित करके पत्नी को ढांढस बंधाते हुए कहा, गहने तो और भी बन जाएंगे, पर ये पुरखों की निशानी थी, इसलिए मन दुखी है। पुलिस ने काफी दौड़ धूप की पर चोरी का सुराग न मिला। हर जौहरी को कह दिया गया कि अगर इस किस्म के गहने कोई बेचने आए तो फौरन पुलिस को खबर की जाए, पर महीनों बीतने पर भी कोई उन्हें बेचने न आया। इस बात को वर्षों बीत गए। दुर्गा देवी भी धीरे धीरे गहनों को भूल गईं। सेठ विशन दास की दोनों बेटियां बड़ी हो गई थीं। बड़ी बेटी उर्मिला बीए में थी और छोटी निर्मला इंटर में। सेठ जी का व्यापार दिनों दिन मंदा होता जा रहा था। आखिर उन्होंने शेयर बाजार का आश्रय लिया। अब वो खूब कमाने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने शेयरों में अपनी समस्त पूंजी लगा दी। उनके एक प्रतिद्वंदी ने उनके एक मित्र को अपनी तरफ मिला लिया। वो आदमी सेठ जी का अत्यंत विश्वास पात्र था। उससे पूछे बिना वो शेयर नहीं खरीदते थे। उसी आदमी ने सेठ जी को खूब सब्जबाग दिखाए और कहा कि ये शेयर बहुत ऊंचे दामों में आएंगे, आप बाजार के सब शेयर खरीद लीजिए। सेठ जी ने बहुतों से कर्ज लेकर सभी शेयर खरीद लिए। कुछ ही दिनों में वे शेयर अपने वास्तविक मूल्य से बहुत नीचे गिर गए। सेठ जी पर मानो वज्रपात हो गया। उनके पास देनदारों के फोन आने लगे। इस बेइज्जती से बचने के लिए सेठ जी ने अपनी कोठी जमीन जायदाद बेच डाली, पर तब भी वो कर्ज नहीं चुका पाए। उन्हें दिवालिया करार दे दिया गया। उनकी हर चीज नीलाम हो गई। बेटियों तथा पत्नी के संग सेठ जी को घर छोड़ना पड़ा। ऐसे दुर्दिन में उनके मुनीम ने उन्हें अपने घर में आश्रय दे। सेठ जी इस हादसे को झेल नहीं पाए और 2 महीने बाद ही दिल का दौरा पड़ने पर चल बसे। बड़ी बेटी ने बीए कर लिया था, छोटी निर्मला ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। दोनों ने नौकरी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, पर बिना सिफारिश नौकरी कहाँ धरी थी। फिर दफ्तरों का विचार छोड़ उन्होंने स्कूलों के चक्कर लगाने शुरू किए। एक छोटे से स्कूल में उर्मिला को 300 रुपये मासिक पर रखा गया। दुर्गा देवी ने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था, अब लिफाफे बनाती और उन्हें बेचकर कुछ पैसे ले आती। उर्मिला का बहुत मन था कि निर्मला को कम से कम बीए करवा दे, पर बेचारी के पास धरा क्या था, यहाँ तो रोटियों के लाले पड़े थे। बड़ी मुश्किल से निर्मला को एक रईस के घर में बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। वो माँ से लिपट कर बोली, अब कम से कम पेट भर रोटी तो मिल जाएगी। वो रोज बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने लगी। जगह दूर थी, इस कारण लौटने में देर हो जाती थी। एक दिन घने बादल छाए थे, वो डरती डरती घर लौट रही थी। इतने पैसे भी नहीं थे कि रिक्शा कर लेती। एकाएक एक कार उसके पास आकर रुक गई। कार एक नवयुवक चला रहा था। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। निर्मला पुरुषों के हथखंडों से परिचित थी। वो रुखाई से बोली, आप अपने रास्ते जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। युवक बोला, आप मुझसे डर रही हैं कि मैं आपको कहीं और ले जाकर आपका सर्वनाश कर दूंगा, लेकिन आप गलत समझ रही हैं। मैं तो एक भाई के नाते आपसे विनती कर रहा हूँ। है वैसे आपकी इच्छा? पानी बरसने वाला है और शायद आपका घर भी दूर है। अगर आपको अपने भाई पर विश्वास हो तो गाड़ी में बैठ जाइए, आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं छोड़ दूंगा। युवक के मुंह से सच्चाई टपक रही थी। देखने में वो सब भी लग रहा था। निर्मला कुछ सोचकर गाड़ी में बैठ गई। नवयुवक उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर पूरे रास्ते वो चुपचाप बैठी रही, बस बीच बीच में उसे रास्ता बताती रही। आखिर गाड़ी एक गंदी बस्ती में आकर रुक गई। अब आगे जाने योग्य रास्ता नहीं था। निर्मला गाड़ी से उतर गई। उसने एक बार कृतज्ञता भरी दृष्टि से युवक की तरफ निहार कर उसे धन्यवाद दिया। युवक हंसकर बोला, भाई का नाम तो पूछा नहीं, पर छोटी बहन अपना नाम भी नहीं बताओगी? उसके बोलने के ढंग पर निर्मला मुस्कुरा दी, आपकी छोटी बहन का नाम निर्मला है, समझे बड़े भैया? वो जरा पहले आई थी, इसी कारण माँ तथा उर्मिला को आश्चर्य हुआ। निर्मला हंसकर बोली, दीदी आज बड़ा मजा आया, पानी बरसने ही वाला था, मैं घबरा कर बड़े बड़े डग भर के चली आ रही थी, इतने में एक गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई। एक सभ्य से दिखने वाला युवक उसमें बैठा था। पहले तो मैंने सोचा कोई मजनू नुमा युवक होगा, पर बोलने के ढंग से वो किसी शरीफ खानदान का लग रहा था। जब उस युवक ने मुझे लिफ्ट देनी चाही तो मैंने खूब खरी खोटी सुनाई, पर जब उसने मुझे बहन कहा तो मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया और मैं उसकी गाड़ी में सवार हो गई। सच दीदी, वो बहुत ही अच्छा लड़का था, आजकल के लड़कों से भिन्न है। उर्मिला हंसकर बोली, अरे बेवकूफ, ये युवक बड़े धोखेबाज होते हैं। पहले ऊपरी सच्चरित्रता की धाक जमा लेते हैं, फिर धीरे धीरे असलियत पर उतर आते हैं। निर्मला दृढ़ शब्दों में बोली, दीदी तुम कितना भी कहो मुझे विश्वास नहीं होता। एक बार अगर तुम भी उसे देख लोगी ना तो वही कहोगी जो मैं कह रही हूँ। उर्मिला मुस्कुरा कर बोली, अब देखना, वो तुमसे मिलने का बहाना बना ही लेगा। भाई बना है, बहन से मिलने आ भी जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? मैं तो उसे हृदय से ही भाई मान चुकी हूँ। निर्मला रोजी ट्यूशन पढ़ाने आती, पर युवक फिर दिखाई नहीं पड़ा। एक दिन वो जब लौट रही थी तो दो गुंडों ने उसे घेर लिया और अश्लील हरकतें करने लगे। दूर तक किसी को न देख उन गुंडों की हिम्मत और भी बढ़ गई। निर्मला घबरा गई। एक होता तो उसे किसी प्रकार मुकाबला कर लेती, पर यहाँ तो दो थे। वो कांप गई। एक बदमाश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया तो वो चीख कर बोली, मेरा हाथ छोड़ दो वरना ठीक ना होगा। यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, बदमाश मुस्कुराते हुए बोला। एकाएक एक कार तेजी से आती दिखाई दी। दोनों बदमाश भाग खड़े हुए। गाड़ी से वो युवक उतरा और आश्चर्य से बोला, छोटी बहन ये क्या, सड़क के बीचों बीच खड़ी हो, बात क्या है, तुम बहुत घबराई हुई भी लग रही हो। निर्मला की आंखें भर आईं। उसने सोचा, आज मेरा भाई यहाँ ना आता तो क्या ये गुंडे भाग सकते थे। उसे चुप देख कर युवक फिर बोला, बहन क्या बात है, कुछ तो बोलो। उसने भरी आंख से एक बार युवक की ओर देखते हुए पूरी घटना बता दी। युवक बोला, देखो बहन, ये स्थान बहुत निर्जन है, तुम शायद रोज ही इधर से घर जाती हो, किसी दिन भी कोई बदमाश तुम्हारी इज्जत से खेल सकता है। क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है जो तुम नौकरी कर रही हो? निर्मला हिचकियां लेती हुई बोली, आज मेरा भाई होता तो इन बदमाशों की हिम्मत पड़ती। लगता है तुमने दिल से मुझे अपना भाई नहीं समझा, पर मैंने तो पहले ही दिन तुम्हें अपनी छोटी बहन मान लिया था। युवक ने उसके आंसू पोंछे और बोला, छोटी बहन, आज तुम्हें मैं घर तक पहुंचाकर तुम्हारी माँ से मिले बिना नहीं लौटूंगा। मेरी माँ नहीं है, माँ का अभाव मुझे हमेशा खलता है, आज बहन के संग मुझे माँ भी मिल जाएगी। गाड़ी एक तरफ खड़ी करके युवक निर्मला के संग घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ के पैर छुए, फिर जब ध्यान से उनको देखा तो वो चौंक पड़ा। उसके पैर वहीं जम गए। वो सब कुछ भूल कर एक टक माँ को निहारने लगा। थोड़ी देर बाद ही वो चैतन्य हुआ और बोला, आप दुर्गा देवी हैं ना, सेठ विशनदास की पत्नी? दुर्गा देवी आश्चर्य से बोली, तुम्हें कैसे पता चला? आज वर्षों बाद किसी ने मेरा ये नाम लिया है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? वो बोला, मेरा नाम दिनेश है। मैं जब छोटा था तो एक विवाह में आपको देखा था। कीमती जेवर पहने हुए आप बहुत सुंदर लग रही थीं। दुर्गा देवी ने गमगीन आंखों से दिनेश की तरफ देखते हुए कहा, बेटे अब कहाँ रहे वे गहने? आज वे होते तो क्या हम इस दशा में होते? किसी को उनकी मुझसे ज्यादा आवश्यकता रही होगी, तभी तो उसने चोरी की होगी। वैसे वो जेवर होते भी तो हमारे दुर्दिनों में काम नहीं आ पाते, क्योंकि मेरे पति ने जिस प्रकार अपना सर्वस्व लेनदारों के हवाले कर दिया था, उन जेवरों को भी उनको भेंट कर देते। दुख सुख तो जिंदगी के संग लगे ही रहते हैं, बस कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। दिनेश ने उनके पैर छूकर कहा, माँ जब तक तुम्हारा ये बेटा जिंदा है तुम्हारी बेटियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं निर्मला का भाई हूँ, इसके विवाह के लिए मैं ही वर तलाश करूँगा। माँ बोली, पहले तो बड़ी बेटी उर्मिला का विवाह होगा। दिनेश ने हंसकर कहा, उसके लिए भी आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। अब दिनेश रोज ही दुर्गा देवी के पास आता था, क्योंकि उसने निर्मला को मना लिया था कि वो अकेले नहीं जाएगी। वो गाड़ी से उसे ट्यूशन वाले घर तक पहुंचाकर फिर घंटे भर बाद उसे लेने पहुंच जाता था। घर पहुंचने पर दुर्गा देवी उसे चाय पिलाकर ही भेजती थी। वो उर्मिला से बहुत कम बोलता था, पर उसकी आंखों के भावों को वो पढ़ चुकी थी, इस कारण भी उससे बोलने में सकुचाती थी। राखी का त्यौहार आया। निर्मला ने बहुत ही सुंदर राखी दिनेश के लिए तैयार की। फिर वो भेद भरी मुस्कुराहट से बोली, दीदी क्या तुम दिनेश भैया को राखी नहीं बांधोगी? उर्मिला सक पका कर बोली, पहले तू तो बांध, मेरी चिंता क्यों करती है? निर्मला इठला कर बोली, बहन हूं ना मैं, चिंता नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? उर्मिला का दिनेश से कम बोलना और शर्माना माँ से छिपा नहीं रहा। बेटी की आंखों की भाषा वो पढ़ चुकी थी, पर फिर सोचती, क्या दिनेश रिश्ता पसंद करेगा? उसके लिए तो एक से एक समृद्ध परिवारों के रिश्ते आएंगे। ये सब सोचकर वो उर्मिला के लिए चिंतित हो जाती थी। राखी वाले दिन दिनेश सुबह सुबह आया। उसके हाथों में कई पैकेट थे। वो मुस्कुराता हुआ घर में घुसा। उसने निर्मला को आवाज लगाई, छोटी बहन कहाँ हो, देखो तुम्हारा भैया राखी बंधवाने आया है। उसकी माँ सुनकर माँ भी आ गई। निर्मला ने अनुपम श्रृंगार किया था। उसे देख दिनेश शरारत से मुस्कुराता हुआ बोला, छोटी बहन अभी तो तुम्हारा भैया आया है, जब दूल्हा आए तो ऐसा श्रृंगार करना? निर्मला रूठ कर बोली, देखो माँ भैया मुझे चिढ़ा रहे हैं, अपने आप तो ऐसे सज धज कर आए हैं मानो किसी के गले में जयमाला डालनी हो। ये नया सूट नई टाई, इत्र से घर महक रहा है। अरे दूल्हा तो आप बने हुए और चिढ़ा रहे हो मुझे। दीदी दीदी जल्दी बाहर आओ, हाँ जरा देखो भैया का प्यारा मुखड़ा तो देखो। उर्मिला सकुचाती हुई बाहर निकली। उसने एक नज़र दिनेश पर डाली जिसमें प्रशंसा के भाव निहित थे, फिर शर्माकर मुंह नीचे कर लिया। निर्मला गर्व से बोली, देखो मेरे भैया को कैसे जंच रहे हैं ना। दिनेश मुस्कुराकर बोला, उर्मिला जी आपकी बहन बहुत शरारती है। उर्मिला हंसी, एक ऐसी प्यारी हंसी जिसे देख दिनेश मुग्ध भाव से उसे निहारता रहा। फिर चैतन्य होते ही उसने अपनी आंखें नीची कर ली। उर्मिला सादे लिबास में थी, उसी में उसका रूप दमक रहा था। उसकी सौम्यता ही उसकी सुंदरता थी। वो यौवन के उस शिखर पर थी जहाँ किसी तरह के श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती। निर्मला चहकती हुई बोली, अरे भैया कौन से लोक में विचरण कर रहे हो, कलाई आगे करो तो राखी बांधूं। दिनेश ने कलाई आगे बढ़ा दी। निर्मला ने एक बहुत सुंदर राखी बांधकर एक बड़ा सा लड्डू उसके मुंह में ठूंस दिया। फिर वह खिलखिलाती हुई बोली, दीदी जरा भैया का मुंह तो देखो, फूलकर गुब्बारा हो गया है। फिर वो शरारत से मुस्कुराती हुई बोली, अरे दीदी तुम भी भैया को राखी बांधो। दिनेश हाथ जोड़ता हुआ बोला, नहीं बाबा एक ही बहुत है, उसी ने काफी दुर्दशा कर रखी है। ये कहकर उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए। उर्मिला का मुंह लज्जा से लाल हो गया, वो भाग खड़ी हुई। दिनेश ने पैकेट खोले। सबसे पहले उसने एक जड़ाऊ नेकलेस तथा एक सुंदर साड़ी निर्मला को देकर कहा, छोटी बहन इसे अभी पहनकर अपनी प्यारी सी शक्ल भैया को दिखाओ। निर्मला साड़ी लेकर भाग गई। फिर दिनेश ने दुर्गा देवी के चरण स्पर्श करके उन्हें एक कीमती शॉल भेंट किया। इतने में निर्मला आ गई और बनावटी गुस्से से बोली, भैया दीदी के लिए कुछ नहीं लाए? दिनेश हंसकर बोला, पहले अपनी दीदी को बुलाओ तो सही, शक्ल देखकर ही चीज़ दी जाती है। निर्मला बोली, अगर शक्ल देखकर ही चीज़ दी जाती है तो दीदी की चीज़ सबसे सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि मेरी दीदी सबसे सुंदर है। ये कहकर उसने वहीं से आवाज़ लगाई, दीदी जरा जल्दी आओ, हम भी देखें तुम्हारी चीज़ कैसी है। उर्मिला सकुचाती हुई कमरे में आई। दिनेश बोला, उर्मिला अपना हाथ बढ़ाओ। उर्मिला ने हिचकते हुए हाथ आगे कर दिया। दिनेश ने जेब से एक बहुत कीमती हीरे की अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहनाकर बोला, माँ यह अंगूठी लौटाना मत, नहीं तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं उर्मिला से विवाह करना चाहता हूँ, मुझे निराश मत कर। ये कहकर उसने दुर्गा देवी के पैर पकड़ ली। माँ ये पैर मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप सहमति नहीं देंगी। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनकी कंगाल बेटी के लिए दिनेश जैसा रईस तथा सुयोग्य लड़का विवाह की याचना करेगा। वो रुंधे कंठ से बोली, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो इन बेटियों को दे सकूं। दिनेश बोला, माँ जो कुछ भी मेरे पास है सब तुम्हारा ही तो है। मुझे तो पत्नी माँ बहन तीनों एक साथ मिल गई हैं। अब मैं आप सबको यहाँ नहीं रहने दूंगा। मुंशी जी को साथ लेकर सभी मेरे घर चलेंगे। वर्षों से मैं सूने घर में रह रहा हूँ, अब वो घर मुझे काटने को दौड़ता है। मुंशी जी बोले, बेटी दुर्गा तुम्हारा बेटा तुम्हें ले जा रहा है तो इनकार मत करना। अब अपने दुख के दिनों का अंत समझो। इस वृद्धावस्था में बेटे का सहारा ही तुम्हारे लिए उचित रहेगा। मैं गरीब तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। दुर्गा देवी बोली, ऐसा मत कहिए मुंशी जी, अगर आप ना होते तो हम सड़क पर भीख मांगते। आपने सिर छिपाने के लिए हमें छत दी, वर्षों हमारा खर्चा उठाया, ये सभी उपकार क्या मैं कभी भूल सकती हूँ? मुंशी जी दुर्गा देवी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी इस दरिद्र का घर छोड़कर तो जा रही हो पर मुझे भूलना नहीं। दिनेश ने उनका कुर्ता खींचते हुए कहा, दादाजी कहाँ चले, पहले तो आपका ही संदूक गाड़ी में रखूंगा, बाद में इन सबका सामान रखा जाएगा। मुंशी जी उसे अपलक निहारने लगे। दिनेश बोला, आप इतनी जल्दी सबसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में हैं? ये नहीं चलेगा। जो रिश्ता आपने हम सब के संग जोड़ा है वो तो जीवन पर्यंत छूट नहीं सकता। आप गाड़ी में बैठिए, मैं माँ उर्मिला तथा निर्मला को लेकर आ रहा हूँ। चलते समय उन चारों ने एक हसरत भरी दृष्टि उस मकान पर डाली जो वर्षों से उनके सुख दुख का साथी रहा था। एक आलीशान कोठी के आगे गाड़ी रुक गई। तीन चार नौकर भागते हुए आए। दिनेश बोला, माँ उतरिए, सामान नौकर ले आएगा। कोठी की सजावट देखकर वे आश्चर्यचकित थे। दिनेश ने सबका सामान अलग अलग कमरों में रखवा दी। थोड़ी देर में नौकर सबको चाय के लिए बुलाने आया। दिनेश उनका इंतजार कर रहा था। उस आलीशान कोठी में पहुंचकर उन चारों को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी महल में आ गए। चाय की मेज पर दिनेश ने कहा, माँ आज ही मेरा दोस्त निर्मला को देखने आ रहा है। वैसे तो हमारी छोटी बहन बहुत सुंदर है पर जरा पॉलिश हो जाए तो और अच्छा है। उर्मिला ये काम तुम्हारा है। निर्मला की आंखें स्नेह भाव से छलक आईं। वो बोली, भैया छोटी बहन को दो दिन भी नहीं रख सकते? दिनेश उसकी पीठ थपथपाता हुआ बोला, बहन तो दूसरे घर की शोभा होती है। वैसे भी तुम्हें अभी कहाँ निकाल रहा हूँ, कुछ दिन अपनी भाभी के संग रह लोगी तब निकालूंगा, इतनी छूट तो दे ही रहा हूँ। शाम को दिनेश का दोस्त परेश आ गया। वो निर्मला को देखकर बोला, यार तू जल्दी से अपनी शादी कर ले, तभी तो मेरा नंबर आएगा। मेरी माँ जैसी बहू चाहती है, मेरी माँ जैसी बहू चाहती है, निर्मला ठीक वैसी है। मेरा वश चले तो अभी इसे घर ले जाऊं। दिनेश बोला, तो बात पक्की रही ना? बिल्कुल पक्की, परेश मुस्कुराया। परेश के जाने के बाद दिनेश दुर्गा देवी से बोला, माँ आज रात मैं आप सबसे कुछ ऐसी बात करूंगा जिन्होंने मेरा सुख चैन सभी छीन लिया है। जब तक मैं आपसे कह नहीं लूंगा मेरे हृदय का बोझ हल्का नहीं होगा। मैं चोर हूँ लुटेरा हूँ, मेरी कहानी सुनकर तुम क्षमा कर दोगी ना? इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो तेजी से अपने कमरे में घुस गया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। दुर्गा देवी दौड़ती हुई दरवाजे के पास आई। अंदर से दिनेश की सिसकियों की आवाज़ आ रही। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो दिनेश ने रुंधे कंठ से कहा, अपनी भूलों पर से पर्दा उठाने के लिए मुझे साहस जुटाने दो, थोड़ी देर में मैं स्वयं बाहर आ जाऊंगा। रात होने पर सभी एक कमरे में एकत्र होकर दिनेश की राह देखने लगे। थोड़ी देर में वो आया। उसकी सूजी हुई आंखें तथा उतरा हुआ चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो वर्षों से बीमार हो। वो निढाल सा कुर्सी पर बैठ गया। अभी तक उसकी आंखों में आंसू भरे थे जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से रोके हुए था। उसने कहा, माँ मैं अपराधी हूँ, चोर हूँ, मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे, पर विश्वास मानो माँ परिस्थितियों ने मुझे ये अपराध करने के लिए उकसाया था। मैं भी एक भोला भाला बालक था। तुम्हें उस गरीब लड़के दीनू की याद होगी जो तुम्हारे घर आकर उर्मिला के संग खेला करता था। तुमने मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया था। अपनी सौतेली माँ के दुर्व्यवहार के कारण जब मैं रोता रोता तुम्हारे पास आता था तो तुम ही मुझे अपनी गोद में बिठाकर आंसू पोछा करती थी। मेरे पिता की मौत के बाद तो सौतेली माँ का व्यवहार और भी कठोर हो गया था। बात बात पर वो मुझे पीटती थी। एक दिन उसने बड़ी बेरहमी से मुझे मारा। उस दिन मैंने सोच लिया चाहे भूखा मर जाऊं पर इस घर में नहीं रहूंगा। मैंने सोचा तुमसे कुछ रुपया मांग लूंगा, पर मेरा स्वाभिमान आड़े आ गया। फिर सोचा अगर तुम्हारी अलमारी से चुपचाप कुछ रुपये निकाल कर भाग जाऊंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। थोड़े से रुपयों के चले जाने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरे कष्टों का अंत हो जाएगा। ये सोचकर रात को पाइप के सहारे मैं कमरे में घुसा। अलमारी खोलकर जल्दी में मैंने चारों तरफ टटोला, तभी मेरे हाथ एक पोटली लग गई। मैंने सोचा इसमें जरूर रुपए होंगे। बस हड़बड़ी में मैं वो पोटली लेकर भाग खड़ा हुआ। मैंने पोटली कंधे से लटके झोले में डाल ली थी। सुबह का उजाला फैल रहा था। बहुत दूर निकल जाने पर मैं जैसे ही जरा सुस्ताने के लिए रुका तो देखा कि एक सेठ जैसे व्यक्ति की जेब से एक लड़का बटुआ लेकर भागा है। वो चिल्लाते रहे पर वहाँ शायद एक दो आदमी ही टहल रहे थे। मैं पूरी ताकत से भागा और दौड़कर उस लड़के के हाथ से बटुआ छीन लिया। मैंने कसकर उसको पकड़ लिया पर मैं थक गया था, ताकत जवाब दे चुकी थी। वो लड़का हाथ छुड़ाकर भाग गया। बटुए में शायद बहुत कीमती सामान था। सेठ बेसब्री से मेरी राह देख रहा था। मैंने बटुआ उनको थमा दिया। उन्होंने मुझे रुपए देने चाहे पर मैंने हाथ जोड़कर कहा सेठ जी मुझे नौकरी दे दीजिए, विश्वास मानिए मैं जी जान से आपकी सेवा करूंगा। सेठ जी मुस्कुराकर बोले ठीक से काम करोगे ना? मैंने कहा सेठ जी एक बार मौका तो दीजिए, अगर मैंने कुछ गलत किया तो कान पकड़ कर निकाल दीजिएगा। मैं उनके संग उनके घर आ गया। सेठ जी की कोई औलाद नहीं थी, सेठानी बीमार रहती थी। सेठ जी ने मुझे उनकी सेवा में रख दिया। मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। भरपेट खाना और सेठानी का स्नेह मुझे मिलने लगा। कई दिनों तक मुझे उस पोटली का ध्यान भी न रहा। मेरी सेवा से सेठानी स्वस्थ हो गई। अब वो मेरे प्रति बहुत कृपालु हो गई थी। उन्होंने मेरे लिए नए नए कपड़े बनवाए और सुविधा का सभी सामान मेरे कमरे में रखवा दिया। खर्च के लिए भी वो खुले हाथों से मुझे रुपए देने लगे। मैंने वो झोला अपने संदूक में रख दिया था क्योंकि अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। सेठ जी मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। अब वो मुझे नौकर न समझकर घर का सदस्य समझने लगे थे। मैं भी जवान हो गया था। धीरे धीरे उन्होंने अपने रोजगार के दांव पेच मुझे सिखाने शुरू कर दिए क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे। इसी बीच सेठानी की मृत्यु हो गई। सेठ जी वो दुख सहन नहीं कर पाए और उन्हें पक्षाघात हो गया। मैंने उनकी जी जान से सेवा की। साल भर वो बिस्तर पर पड़े रहे। मैं चौबीसों घंटे छाया के समान उनके संग रहता। उनकी आंखों में मेरे प्रति अगाध प्यार तथा कृतज्ञता भरी रहती थी। एक दिन उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे बुलाया। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। बड़ी मुश्किल से उनका हाथ उठा लेकिन फिर हाथ गिर गया। मैं चीख पड़ा। सेठ जी का वसीयतनामा खोला गया। उसमें लिखा था मेरा शव को मेरा बेटा दिनेश ही अग्नि देगा। मैं अपनी समस्त संपत्ति उसके नाम कर रहा हूँ। भर रही आवाज में दिनेश ने आगे कहा इस संसार से विदा होते होते भी वो मेरी जिंदगी बना गए। अब मैं उस समस्त संपत्ति का मालिक था पर मैं अपने दुर्दिनों को भूला नहीं था। मैं हमेशा वो संदूक अपने सामने रखता था ताकि धन के मद में मैं कोई अनुचित कार्य न कर बैठूं। सेठ जी ने मुझ बेसहारा की मदद की थी। अब मेरे जीवन का भी यही ध्येय निश्चित हो गया था। मैं खुले हाथों अनाथों तथा विधवाओं की मदद करने लगा। मेरा कौन बैठा था जो इस अथाह संपत्ति का भोग करता। एक दिन जब मैं संदूक की तरफ देखते देखते अपने अतीत में पहुंच गया तो मुझे उस पोटली की याद आई। मेरे मन ने कहा शायद इस पोटली के कारण ही मेरी जिंदगी चमकी है। उस पोटली में कितने रुपए हैं ये तो आज तक मैंने देखा ही नहीं था। ये सोचकर मैंने संदूक खोलकर पोटली निकालकर खोली। उसे खोलते ही मेरी आंखें चौंधी आ गईं। उसमें हीरे पन्ने तथा मोतियों से बहुमूल्य गहने थे जो आप पहना करती थीं। थोड़ी देर के लिए तो जैसे मेरी धड़कन रुक गई। मैंने सोचा ये क्या गजब कर डाला मैंने। गहनों के कारण आप सब कितने दुखी और परेशान हुए होंगे। मैं पोटली लेकर आपके घर की ओर भागा। वहां पहुंचने पर मुझे पूरी स्थिति का पता चला। मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। मुझे क्या पता था कि आप इतनी गरीबी में दिन काट रही हैं। उस पोटली ने मेरा सुख चैन छीन लिया। मैं रोज गाड़ी लेकर घूमता कि शायद आप कहीं मिल जाएं, पर वर्षों टक्करें मारने पर भी मुझे आपका पता नहीं चला। मुंबई कोई छोटी जगह तो है नहीं कि मैं आपको ढूंढ पाता। पर एक दिन निर्मला के संग मैं आपके घर पहुंच गया। उर्मिला तथा निर्मला को तो मैं नहीं पहचान पाया क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, पर आपको देखते ही मैंने पहचान ली। रोज़ तो मैं अपने मन से जूझता कि आज आपके सामने सब कुछ सच सच बताकर इस अंतर्द्वंद से छुटकारा पा लूं, पर हर बार मेरी हिम्मत जवाब दे देती थी। आप सबसे बिछुड़ने मात्र से मैं कांप उठता था। मैं जानता था कि अपना अपराध स्वीकारने के बाद मैं आप सबको खो दूंगा। माँ, आज अपनी समस्त हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी अपराध गाथा कह डाली। आप मुझे कड़ा दंड दीजिए, पर विश्वास मानिए, मैंने परिस्थितियों से मजबूर होकर चोरी की थी। मुझे क्या मालूम था कि इस पोटली में इतना कीमती सामान है जिसके अभाव में आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। ये कहकर उसने दुर्गा देवी के पैरों पर अपना मस्तक रख दिया। निर्मला बोल उठी, भैया आपने एक नहीं दो दो चोरियाँ की हैं। दूसरी चोरी आप छिपा गए। याद रखिए, चोरी करना जुर्म है और उसे छुपाना तो उससे बड़ा जुर्म माना जाता है। दिनेश अचकचाकर बोला, छोटी बहन, पोटली जरूर मैंने चुराई थी, पर मैं सच कहता हूँ उस अलमारी से मैंने और कुछ नहीं चुराया था। निर्मला गंभीर स्वर में बोली, किसी का दिल चुराना क्या जुर्म है? क्यों क्यों दीदी? माँ, अब भैया को इस जुर्म में सात फेरों के बंधन में मजबूती से बांध दो ताकि कहीं भाग ना पाए। उर्मिला तथा दिनेश के मुँह लज्जा से आ रक्त हो गए। दुर्गा देवी ने दिनेश को स्नेहपूर्वक उठाते हुए कहा, बेटा जब सेठ जी दिवालिया करार दे ही गए तो हमारी एक एक चीज़ नीलाम हो गई। अगर ये आभूषण उस समय हमारे पास रहते तो क्या बच पाते? अब मैं अपनी बेटियों के विवाह में उन्हें कुछ दे तो पाऊंगी? अगर मैं तुम्हें कुछ दे ना पाती तो मुझे हार्दिक दुख होता। अब रही तुम्हें सजा देने की बात, तो मैं तुम्हें ऐसे मजबूत बंधन में बांध रही हूँ जिसमें तुम जीवन पर्यंत बंधे रहो। कहकर उन्होंने उर्मिला का हाथ दिनेश के हाथ में पकड़ा दिया।
arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रिजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन।